यही ज्ञान सब जीवों को सुनाओ और इन सब भोली आत्माओं को का भ्रम निवारण करो कि तुम काल के जाल में फंसे हो। यहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, ये काल का भयंकर जाल है। इसने अपना आहार अपने स्वार्थों समय यहाँ पर फंसा रखा है। 1 लाख जीवों का रोज नित आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही तेरे देवन की उत्पत्ति। भाई जिनको तुम अविनाशी अजरो अमर कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को, इनकी उत्पत्ति सुनाता हूं। ये परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में वो ज्ञान दिया है जो आज वेदों ने प्रमाण किया है, आज जो पुराणों ने प्रमाण किया है, वही परमात्मा ने, कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान दिया था जो अभी तक कूड़े में डाल रखा था इन नादान संतों की, महर्षियों की नादान सोच के कारण। और आज वो सदग्रंथ भी हमारे साथ, पवित्र पुराण भी हमें सहयोग दे रहे हैं कि ज्यो की त्यों है। वही परमात्मा बता रहे हैं कि यही का, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति। भाई कुछ संक्षिप्त कहूं गौराई, सब संशय तुम रे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त रूप में, साधारण कुछ संक्षेप रूप में बताऊंगा जिससे तुम्हारे सब संशय का निवारण हो जाएगा। जिस पुण्य आत्मा को सृष्टि रचना सही समझ में आ गई, उसके सारे संशय निवारण हो जाते हैं। और जब तक सृष्टि रचना जीव को समझ में नहीं आती, कोई भी सदग्रंथ आप नहीं समझ सकते। यही कारण रहा कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने गीता, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों के अनुवादों में अर्थों के अनर्थ करने पड़े। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुतम अर्थ को अति श्रेष्ठ लिखा है। वर्ज माने जाना होता, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में वर्ज माने जाना होता, इन्होंने आना लिख दिया, क्योंकि इनको ये सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, ये मास्टर की इनके पास नहीं थी। क्या बताते हैं, कुछ संक्षिप्त कहूं गहुराई, सब संशय तुम रे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम सबसे पहला प्रभु, सबसे पहले का जो मालिक है, पुरातन प्रभु। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहते हैं, वो राम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे राम कहते, वो राम है कौन ये नहीं समझ पाए। राम राम तो सब कह रहे हैं, परंतु आदि राम कोई बिरला जाने, उस वास्तविक प्रभु के विषय में तो कोई संत बहुत ही कम है जो तुम्हें बता पाऊंगे। ज्ञानी सुन, ये जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं, इसको बुद्धिमान सुनेंगे वो तो सत्य मानेंगे, और मूर्ख सुनेगा उसकी समझ में आवा नहीं, वो कहेगा झूठ बोले झूठ बोले। क्या कहते हैं, भरम गए जग वेद, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान सुनेंगे तो सत मानेंगे, हृदय से लगाएंगे और सो सो शुक्र करेंगे तेरा के कहां छुपा था यह अनमोल ज्ञान। और मूर्ख सुने तो नौकरण, आप अपनी सब कहा करते हैं, आप अपने हिसाब से सब कथाएं सुनाते हैं। माँ अब कौन है, क्या कथा सुनाना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन, अंजन पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि इनकी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो है अष्टंगी और पिता इनका ज्योति निरंजन। होए होए, ये 600 साल पहले दी हुई अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब की आपको सुना रहा है दास, और वही ज्यो की त्यों शिव महापुराण और देवी महापुराण और ब्रह्म महापुराण ने आपको प्रमाण दिया। शिव महापुराण के 6वें अध्याय रुद्र संहिता में लिखा है कि सदाशिव से और दुर्गा से, इस सदाशिव और इस पार्वती से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा कहता है उसी प्रकार इन दोनों ने मुझे भी पैदा किया। अब इस 6वें अध्याय में और 7वें में तो ये लेखक गोल मोल कर गया, 9वें अध्याय में फिर लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो सदाशिव तो गुणातीत कहलाता है, यानी चार सती थी आप बता दी। रज ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इस काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, पति पत्नी विहार्थ, और वो जो चौथा जो है वो काल है, ज्योति निरंजन अलग है। तो आज वही परमात्मा बता रहे हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई ही, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में, और पीछे से उस जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के संगाने की, उसकी कहते हैं पीछे से वह माया उत्पन्न की, माया बना दी, दुर्गा बना दी कबीर परमेश्वर ने। पहले कीन माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई ही, पीछे से माया उपजाई। राई मीन राय, राय माने प्रभु स्वामी मालिक, ये निरंजन भगवान बनाया, राय साहब बोला करें राय साहब, तो ऐसे ये राय यानी ये कुछ अंश का क्षेत्रीय कुछ को मालिक होता है उसको राय साहब कहा करते राय। पहले कीन निरंजन राय, ये राय कहो राय को, ये क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें उसको जो है राग को सुचारू करने के लिए मात्राओं की फेरबदल संतजन किया करते हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। सुंदर लड़की को देख करके, उस माया के रूप को देखकर इस ज्योति निरंजन के मन में विकार उत्पन्न हुआ। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, हे देवी को तुरंत धर खाए। विषय वासनाओं के से प्रेरित होकर के ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो दुर्गा ने उसके पेट में शरण ली, उसको खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे प्रभु मेरा करो उभारा। पूर्ण परमात्मा से दुर्गा ने फिर प्रार्थना की थी, हे परमात्मा मुझे बाहर निकालो। टेर सुनी तब ता हम आए, अस्तंगी का बंद छुड़वाए। तब मैं वहां जोगजीत रूप धारण करके दुर्गा को काल के पेट से निकाला और इनको वहां से बाहर चलता कर दिया। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, ही काल निरंजन दीन ननकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई। कि वहां से इस दुर्गा समेत इसको भगा दिया और इसने वहां बुरा दुर्व्यवहार किया, जिस कारण से इसको सजा मिली। अष्टंगी और काल अब दोई, ही मंद कर्म से गए बिगोई। कहते दुर्गा और ये काल अपने अपने गंदे मंदे कर्म थे, बुरे कर्म से ये दोनों डूब गए। दुर्गा ने मंदा कर्म किया कि सबसे पहले काल के साथ आने की हिम्मत कर ली, ये इसका मंद कर्म दुष्कर्म था। अपने मालिक ने छोड़ के दो सारा सुख दे रहे थे, कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी, अपने पिता के भंडार से भोजन करते थे, उसका गुणगान करते थे, मस्त रहते थे, इतना आनंद था। इतना सुंदर स्थान को त्याग दिया इस ज्योत निरंजन के चक्कर में। कहते मंद अष्टंगी और काल अब दोई, ही मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे का से भग कर लेना। अब इस काल ने दुर्गा के साथ सृष्टि कर्म किया और अपनी सबद शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री दुर्गा को बनाई। धर्मराय को धर्मराय भी बोलते हैं इस काल को, धर्मराय इसलिए कहते हैं, इसने कहा था मैं धर्म का सत का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, और इसने ये जो का तो ही कर रहा है। कानून तो सही बना रखा है कि जो जिसे कर्म करेगा वो फल भोगेगा, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो। लेकिन कहते हैं ना जो ये फ्रॉड करते हैं, सूझबूझते हैं, वो क्या करते हैं, कागज तो पूरे रखते हैं, सरकारी कागजों में तो पूरा दिखाते हैं और डुप्ली और नीचे से अपना कार्य पूरा रखते हैं। ऐसे ये काल कागज तो रखे पूरे, लेकिन अपनी सूझबूझ से इस जीव को भ्रमित पूर्ण करवा देता है। अब जैसे ये संत जन आए हैं गुमराह कर रहे हैं, काल कहता मैं क्या करूं, ये कह रहे हैं ये कर रहे हैं, करें तो दोनों को नरक में ठोकेगा, इन संतों को भी और अनुयायी तो आप कर्महीन हो जाएंगे, इनकी भक्ति बनती नहीं ये, और संत दूने दोषी ये गुमराह कर रहे हैं, इनको भी नरक में डाला जाएगा, इनके लिए कोई राहत नहीं, कोई कोई कंसेशन नहीं किसी के लिए। इसलिए ये कहता है धर्मराय कहलाता है, धर्मराज धर्मराज धर्मराय ये स्वयं भी धर्मराज है, जैसे राष्ट्रपति भी न्यायाधीश है, वास्तव में न्यायाधीश राष्ट्रपति है, और उन्होंने अपनी एक सलाहकार समिति बना रखी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी न्यायाधीश कहलाता है। ऐसे ही ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज यहां बना रखा है सब जीवों का अकाउंट रखने के लिए, और वो स्वयं भी काल भी यहां का धर्मराज है, ये धर्मराय कहलाता है। ये कानून में फेरबदल नहीं होने देता बिल्कुल भी, जो जिसने जैसा किया वैसा ही भोगना होगा, जैसे श्री राम ने बाली मारा था तो श्री कृष्ण रूप में उसका बदला इसने देना ही देना पड़ा, जबकि ये काल का सीधा पुत्र है। तो क्या बताते हैं, धर्मराय धर्मराय की ने भोग बिला, धर्मराय को हिकमत की ना नखरेखा, नख माने नाखून से, नखरेखा से भग कर ली ना, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमात्मा ने कितनी प्यारी वाणी में कहा है कि तीन पुत्र इस काल और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुए, जिनका नाम ब्रह्मा और विष्णु और शिव रखा गया, और यही पुराण बता रहे हैं कि इन तीनों के पिता ज्योति निरंजन और माँ दुर्गा है, ये प्रकृति देवी कहो चाहे दुर्गा कहो काल या अष्टंगी कहो। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र इस काल के इस ढमढमे ने चला रहे हैं, इनकी ऊपर आसक्त होकर ये जीव धोखा खा रहे हैं, इनको सुप्रीम पावर मानकर ये धोखे में रह जाते हैं, ये पूर्ण मुक्त नहीं हो पाते, इनको कोई लाभ नहीं मिलता। तीन पुत्र तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे, पुरुष गम कैसे कोई पावे, है काल निरंजन जग फरमावे, तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। तीन लोक के एक एक ब्रह्मांड के एक एक स्वामी बना के इस तीन लोक में एक ब्रह्मांड में तीन लोकों में इन पुत्रों को राज दे दिया, एक विभागीय मंत्री बना दिया, और स्वयं उस सुन स्थान पर रहता है, सुन यानी ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पिता के विषय में नहीं जान पाए। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया था, लेकिन कोई दर्शन अपने पिता के नहीं हुए। विष्णु शिव जी ने तो 88,000 वर्ष तप कर लिया, और शिव ब्रह्मा ने भी हजारों वर्ष तप किया। तो यहां कहते तीन देव सो उनको ध्यावे, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। बटपार माने ठग है, यू ज्योति निरंजन ये ब्रह्म और तीन लोक के जीवों का ये रोज आहार करता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, जैसे आपको बताया कि सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है, और एक विष्णु की सात विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनको भी तपतशिला पर जाना ही जाना पड़ता, चाहे देव मरे और चाहे कोई आम प्राणी मनुष्य मरे, इन सबको एक बार तपतशिला पर इनका सोरबा निकालता ही निकालता ही। तीन लोक सो ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तीन तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये तीन बेटे हैं और ये ज्ञानहीन जीव इन की पूजा में लगे रहते हैं। कहते हैं उसके तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। काल पुरुष सबो को चीन्या, पूर्ण पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आद ब्रह्म को ना पहचाने। इस काल को तो भगवान सब माने बैठे हैं, पर उस आदि परमात्मा के विषय में कोई सुनने को तैयार नहीं। तीन देव और अवतारा हाता को भज सकल संसारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने और इन जितने अवतार रूप में आते हैं, इनके इनकी भजनों में, इन्हीं की महिमा गुणगान में यह सारा संसार लगा हुआ है। तीन देव और सक और अवतारा ताको भजे सकल संसारा, तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्म दास में कहो पुकारा। तीनों गुण का ये विस्तार माने ये तीनों गुण का जोड़ा हुआ जुगाड़ है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार और कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 से 15 में स्पष्ट वर्णन किया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका निमित्त मैं ही हूं अर्जुन, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, विष्णु से स्थिति और तमगुण शिव जी से संहार, इसका मूल कारण मैं हूं। लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है। सुन निरंजन बड़ा बटपारा, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ज्योत निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु भेद न जाना। ये अलग से रहता है सुन में, तो ये कहता है कि इन तीनों गुणों के मैं नहीं हूं, और इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सदगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है वो मुझसे ही होने वाला जान। और इन तीनों गुणों की भक्ति के ऊपर ही जो इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं के ऊपर जो आसक्त हैं, इन्हीं की पूजा में लगे हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते, और अपनी को भी कहते हैं ये भी व्यर्थ है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी अनुतम है, इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4वें मंत्र में कहा है कि वो परमात्मा तो और है, और उसकी साधना करने वाले फिर संसार में लौट कर नहीं आते। तो सर्व भाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म मृत्यु नहीं होगा, फिर वो संसार में लौट कर नहीं आते जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। उसके लिए किसी संत की तलाश कर, मैं उस मार्ग को नहीं जानता। इसी विषय में आदरणीय गरीबदास साहेब प्रभु के दर्शन के उपरांत अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रहे हैं। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। माया इस ज्योत निरंजन के द्वारा विवश की हुई ये दुर्गा उत्पत्ति करवाती है, सतीथी कराती है, संहार कराती है। तो अब उस दुर्गा को भी दोष दे रहे हैं और निमत काल ही है। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। अपने पैदा करे आप खावे, सांपनी जैसा नाग जैसा काम इनका। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। सुखर सुन में यु धर्म अन्यायी, यु ज्योति निरंजन को धर्म राय भी बोलते हैं, इसको कहते यु धर्म, यु अन्यायी सुन शिखर में रहता है, हरिशन या दुर्गा यहां भेज दी, और ये सब की बुद्धि भ्रष्ट रख है, किसी भी पॉइंट से किसी भी कारण से। ये जैसे आपको बताया अभी 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ, वहां पर ये माया राज बन गई, राज के बंटवारे के ऊपर माया। यह भी माया है, यह भी एक जाल है काल का। कौरव और पांडव लड़का मर गए, क्या बताते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख ग्रह सैनित उठ दूती ही माया आदि तकत की कुती। अब परमात्मा ने इस दुर्गा को भी दोषी, आदरणीय गरीबदास साहिब ने दुर्गा को भी साथ दोषी बना लिया। कहने लगे कि ये सहयोग दे रही है ज्योत निरंजन को 1,00,000 जीव नित आहार करने में, और वो काल जो है ज्योत निरंजन उस परमात्मा के दरबार का कुत्ता है, उसने वहां कुत्ते जैसा कर्म किया जिससे वो निष्कासित किया गया, और वही कुत्ता कर्म इसने यहाँ चालू कर रखा है। यहाँ कोई सिस्टम ठीक नहीं 21 ब्रह्मांड में। ठीक है, हमने राजब्रूज बना कर और ये व्यवस्था बना रखी है, अगर ये एक 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 महीने अगर ये राज ये कोई भी पुलिस वगैरह ना होता, फिर देखा इन जीवों की वृत्ति, जब कोई बहन बेटी सुरक्षित रह जाए, जब किसी की कोई प्रॉपर्टी ठीक पा जाए, तो हम ऐसे वहां से बिगड़ा हुआ हमारा सारा शरीर है, व्यवस्था है, उस काल ने वहां कुत्ते जैसा कर्म किया और यहाँ भी हम कुत्ते जैसी वृत्ति के बना दिए। जैसे तगड़ा कुत्ता आता है और छोटे कमजोर कुत्ते ने रोटी मुंह में ले रखी हो, वो दूर से घुर करेगा और वो मुख से रोटी डालकर दूर खड़ा हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ हर जीव की है। तो यहाँ उसी दृष्टिकोण से लताड़ रहे हैं। सोन शिखर में शिखर सोन में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायण मैल पठाई लाख ग्रह से नित उठ दूती माया आदि तकत की कुती। 1,00,000 कहते सूते उठते काल खा लेता है और शाम तक 1,00,000 मार मार के और किसी का बेटा मरोचे बेटी 1 सेकंड नहीं लगाता। इसका कोई रहम नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि अपनी मर्जी से छांट कर खाऊं, किसी से निकालूं, किसी को खाऊं। तो हम सोच रहे हैं ये हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदारी, हमारे भाई बहन पति पत्नी नहीं, काल कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, यही तो तुम भूल कर रहे हो, रोज यही समझाते हैं और वही तुम्हारी बुद्धि टिकी रहती है, ये तो काल आहार है। झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। ये सब काल आहार है। कुछ को खा लिए, कुछ तो खा चुका है, कुछ तो मुंह में जा लिए, बाकियों को अब पाल रहा है और वो टाइम आएगा जब उनको भी ले जाएगा। उससे पूर्व हमने जो करना परमात्मा कहते हैं वो संत बताएंगे। क्या बताते हैं? 1,25,000 घड़ी है नित भांडे, 1,25,000 घड़ी है नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ओए होए, 1,25,000 लाख ग्रह से नित उठ दूती ही माया आद तकत की कुती, 1,25,000 घड़ी है नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1,00,000 तरोज मारे है और 1,25,000 ये भांडे ये शरीर और तैयार कर देता है। अंसा उत्पत्ति ये भोली आत्मा, ये जीव आत्मा जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित कर रखे हैं। हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे, उत्पत्ति माने जन्म, पर ले माने मृत्यु। ये तीनों चेला बटपारी सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, इन तीनों भगवानों को भी लताड़ रहे हैं कि ये भी उस ठग का सहयोग दे रहे हैं। इन्होंने स्त्री और पुरुष रचके और हमें एक दूसरे के साथ आकर्षित कर दिया। खोखापुर में जीव भुलाए सोपन बिस्त वैकुंठ बनाए, ये खोखापुर है। खोखा माने खाली, ऊपर तो बढ़िया दिखा, अंदर वस्तु कुछ नहीं, इसमें ये जीव भुला रखे, ये खोखापुर है। और इसमें ये सोपन बिस्त वैकुंठ भी सोपन सा, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ये मेरा कार है, कोठी है, बेटा है, बेटी है, हर 1 सेकंड के बाद मृत्यु हो जाए, अपना कुछ भी को नहीं। ऐसे स्वर्ग में जो देव बने महादेव बने हैं, इनकी भी ऐसे दिन आएगा मृत्यु हो जाएगी, वो सोपन सा हो जाएगा, उनका कुछ नहीं वहां पर। तो क्या बताते हैं? खोखापुर में जीव भुलाए सोपन बिस्त वैकुंठ बनाए, ये है हरहट यो अरहट का कुआ लोई, या गल बंदा है सब कोई। ये अरहट रहट होता है, नीचे से बाल्टियां उस रहट की चैन पे लगी हुई भरी हुई पानी से आती हैं, ऊपर खाली हो जाती हैं, नीचे से फिर भर के आती हैं, फिर खाली हो जाती हैं। कहते हैं यहाँ तुम शुभ कर्म अशुभ करते हो, शुभ ऊपर शुभ स्वर्ग में, अशुभ नरक में खाली करके फिर आ जाते हो, फिर भर के जाते हो, फिर खाली करके आते हो, 84,00,000 योनियां भोगते हो। ये अरहट का कुआ लोई ही यागड़ बंदा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंदे कोई बोरो। हाथी तले के और चीटी ताई जीव से लेकर इन अवतारों तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी इस अरहत की डोर कर कितने चक्कर काट चुके, कितने जन्म मृत्यु हो चुकी है। पीर पैगंबर कुतुम ओलिया सुरनर मुनि जन ज्ञानी को तुरा ना पाया, ये काल का बंधे प्राणी ही। ए भगवान, शुरू शुरू में ये दास जब ये वाणी पढ़न लगा प्रभु की के पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, ये सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये मुनिजन ऋषि महर्षि देवताओं को भी मार्ग नहीं मिला, ये काल का बंधे हैं, तो दिल में खटक सी लगे थी कि हे भगवान इन बातों ने कौन मानेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देव भी काल के बंधे हैं, पर इन सदग्रंथों ने तो मेरी इस बात को कति आसान कर दिया। अब समझण में दो मिनट भी ना लगे पुण्यात्मा को कि सचमुच ये तो कुछ भी नहीं था, इन ऋषियों महर्षियों के पास तो खख नहीं था। ये वही प्रक्रिया हम जीव कर रहा है, साधना की, को सूत बैठ गया, किसी जन्म में वेदों अनुसार साधना कर ली, स्वर्ग से ले गए, सिद्धि आ गई, एक दूसरे प्रभु पा गए, वो कहानी कथा इनकी इवताएं सुनी जाती है, दुर्वासा ने ऐसे कर दिया था, विश्वामित्र ने ऐसे कर दिया था, अर्जुन बेरा फिर विश्वामित्र गिल के हो गया, आगे वो ज्ञान हमें नहीं था। क्या बताते हैं कि स्वर्णर मुनिजन कुतुब ओलिया स्वर्णर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तोरा ना पाया, ये यम के बंधे प्राणी, इनको रास्ता नहीं मिला। तो ये बात समझ में पहले कम आवाओ, अब सदग्रंथों ने आसान कर दिया कि इन देवताओं ने भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, ऋषियों को, महर्षियों को, सिद्धों को, गोरखनाथ जैसों को भी वो तत्व भेद और सही व्यक्ति का विधि नहीं मिला, उनको नहीं पाई। अब तो समझ में आगी कति आसान होगी क्योंकि सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं, इनको तो रास्ता मिला नहीं, ये तो काल ही के साधना में उलझे रहे, यम के बंधे प्राणी। धर्मराय कह धूमा धामी जंपर दंग चलाऊं, जंपर जंग चलाऊं, जो राखूं तो जान न दूंगा, बांध अदर घर जाऊं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत निरंजन कह जो अलख ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में ही करता बाई। यहां पर कहते हैं ज्योत निरंजन भगवान बना बैठा है, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसमा भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। यहां तो एक भगवान नहीं कहते, नौ अवतार ये भी भगवान थे, तो कहते एक ना करता दो ना करते नो ठहराए भाई, और दसमा भी ऐसे ही चला जाएगा जैसे श्री राम और श्री कृष्ण चले गए कुछ समय अपनी लीला दिखा करके, काल प्रेरणा से आते हैं और यहाँ कुछ अनोखी सी आम जीवों से ये तगड़े होते हैं, उनसे उनमें समर्थ होते हैं, फिर ये आम जीव उनसे प्रभावित होकर उन्हीं के गुणगानों में लगे रहते हैं। ये भी काल का एक सुनियोजित चाल होता है, जाल होती है, सुनियोजित चाल है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में ही करता वाई, सैंस अठासी दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, एता में जब का तलवाना चलो पुरुष कबीर किशोरी। अब क्या बताते हैं कि सैंस अठासी हजार ये ऋषि लोग हैं और सभी इस काल के ही माया के ही साधना के इस डोरी से बंधे हुए हैं, काल के जाल वाली डोरी से बंधे हैं। इन सब में काल ही का तलबाना यानी हुक्म चलता है, इनको उसी विधिवत अपने कर्म आधार पर ही सब व्यवस्था होती है, इनके कर्म में भी कोई फेर बदल नहीं हो पाता। अपनी समर्थता बताते हुए परमेश्वर के विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, 14 भवन गमन है मेरा, जल थल में सर्वंगी, खालक खलक खलक में खालक अवगत असल अभंगी, अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चल आए, इन पांचों पर परवाना मेरा, बंद छुटावन धाए। इन पांचों के ऊपर मेरा तलबाना, मेरा हुक्म चलता है, कबीर परमेश्वर कहते हैं, और औरों के ऊपर इन पांचों का चलता है। इन पांचों कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन पांचों ने मिलकर ये सब प्रपंच बना रखा है, इसलिए तुम हम जो कह रहे हैं इस पर विचार कीजिए, इसको लहना, लहना माने गहराई से सोचना, संकेत समझ जाना हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रभावित होता है और फिर कहता है, परमात्मा आपकी बात मैं सारी मान रहा हूं, लेकिन प्रभु मैंने सुना है कि क्या भगवान कृष्ण, देखो भगवान श्री कृष्ण में भी तो शक्ति है, जैसे श्री मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चरवा के भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था, आप कैसे कह रहे हो प्रभु ये शक्ति नहीं है। अब हमारी बुद्धि इस पुराने रंग में इतनी उलझ गई, इतना तत्व ज्ञान सुनकर भी हमारी ऊपर न बुद्धि उठती नहीं। परमात्मा ने कहा भाई बात सुन जो धर्मदास, ठीक है ये नहीं कहा मैंने कि इनमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन तुम इनको सर्वशक्तिमान कहते, सर्वशक्तिमान नहीं, ये केवल किया हुआ कर्म ही दे सकते। यहां तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तामर ध्वज को जीवित कर दिया आरे से दो फाड़ करवा के, ये कर सकते हैं क्योंकि इतनी शक्ति है इनमें ये, लेकिन श्वास नहीं वृद्धि कर सकते, ये जीव की उम्र नहीं बढ़ा सकते। और जब तक श्वास है इस शरीर को तोड़ फोड़ कर ये दो मिनट में ठीक कर सकते, इनमें इतनी पावर है। अब जब भगवान श्री कृष्ण भी वहीं थे जब अभिमन्यु की मृत्यु चक्र व्यूह में प्रथम दिन ही होगी थी, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे सुभद्रा के पुत्र अर्जुन से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी, भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण कोई बचाव नहीं कर पाए। अब धर्मदास इस बात को सुनकर चुप हो जाता है और परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि इसकी बुद्धि अभी काम पूरा नहीं कर रही है, इसके मन में यू खिचड़ी ज्ञान घुसा हुआ है। अब ऐसे करके परमात्मा पूर्ण ब्रह्म फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब धर्मदास बुरी तरह रो रहा है, ए भगवान मेरे से गलती होगी प्रभु, एक बार दर्शन दे दो मेरे मालिक, दर्शन दे दो मेरे मालिक, मैं फिर कभी ऐसा कभी आपके साथ वाद विवाद नहीं करूंगा। लेकिन परमात्मा ने 6 महीने तक कोई दर्शन नहीं दिए। अब उसके बाद ये तो पता लग गया कि जो साधना तू कर रहा है तो डेड हो रहा है, ये असंग युग हो गए, ये साधना करते इन भगवानों की पूजा करते, तो उसके बाद मथुरा के बाद वृंदावन जाते थे, वृंदावन के बाद फिर बरसाना जाना था, लेकिन वह नहीं गया, ना वृंदावन गया ना बरसाना गया। बरसाना में किस लिए जाते हैं, राधा से सिफारिश लगवाने के लिए कि राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। भगवान कहते हैं ये तुमने ड्रामेबाजी आप पर शुरू कर दी, ये आप मनमुखी कथाएं बना लिए, मनमुखी मंत्र बना लिए, मनमुखी शब्द बना लिए, ये ना गीता जी में प्रमाण है ना वेदों में प्रमाण है, इसलिए मनमाना आचरण है। अब जब राधा जी मिलने आती थी भगवान श्री कृष्ण से लुक छिपके, तो दुनिया उसको बुरी दृष्टि से देखा करती थी, उसको गुंडी कहा करती थी कि कहां जाती है एकांत में एक पुरुष से मिलने के लिए। और जब वो चली गई, अब लाखों हजारों वर्षों के बाद आज उससे सिफारिश लगवाते हैं कि हमें कृष्ण से मिलवा दे। और जब कृष्ण जी वहां पर थे, जब उसके साथ संघर्ष कर रहे थे, कारण यही था कि ये स्त्रियों में नाचता है और समाज इसी कारण से भगवान से द्वेष करता था, इसी कारण से ये जरासिंह शिशुपाल जैसे भगवान के साथ व्यवहार किया करते थे। अब वो चले गए हैं तो हम सब उनके गुणगान कर रहे हैं। इंसानियत जब थी तो उनके रहते उनको मानते, जितना वो लाभ दे सकते थे आपको अवश्य दिलाते, लेकिन ना मोक्ष उनका पूर्ण है ना ही उनके अनुयायियों का। तो ना वृंदावन में गए ना फिर बरसाना गया, धर्मदास रोता हुआ अपने बांधवगढ़ की तरफ चल पड़े, अपने मूल स्थान घर को आ गए। अब धर्मदास की धर्मपत्नी आमनी देवी नाम था उस भगतमती का, उसने उसको पता था कि मेरे पति अभी 6 महीने में वापस आएंगे, क्योंकि पूरे टूर पर निकले हैं, 68 तीर्थ पर जाएंगे। तो जब देखा कि वो 10-15 दिन के बाद ही वापस आ गया है और रो रहा है बुरी तरह, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सारा कमीज भीग गया है, आमनी देवी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो भगत जी, नहीं बोल पाए, जैसे किसी का कोई शव निजी व्यक्ति मर जाता है, परिवार का सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वियोग में जबान नहीं फटती काफी देर, तो रोना ही रोना आता है। इस बुरी तरह वियोग में, भगवान के विछुड़ जाने के वियोग में धर्मदास रो रहा है। धर्मपत्नी बैठकर पूछ रही है, उसे प्यार कर रही है, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो? क्या उसने सोचा, आमनी देवी ने सोचा, इसके कोई पैसे गुम हो गए होंगे, किसी ने चुरा लिया होगा निकम्मे ने, और मैं कई बार इसको टोक देती थी कि ज्यादा धर्म पुण्य मत किया करो, कि कहीं ये इस उद्देश्य से दुखी हो रहा हो कि अब मैं पैसे मांगूंगा, तो ये नो कहेगी कि कोई बात नहीं, अब मत जाना है और पैसे खराब मत करो, कि मेरे कारण ये इतनी आत्मा दुख पाई हो, मैं क्यों दोषी बनूं। कहती है भगत जी, आपका भगवान ने कोई कमी छोड़ रखी है, कितने पैसे ले जाना और अपना कार्य पूरा करके आना, और जो है ये तो कोई अब हमारे मांगत मांगते होंगे जिन आपके पैसे चुरा दिए। काफी देर रोने के उपरांत धर्मदास रोते हुए कहता, आमनी अगर मेरा वो धन लुट जाता तो मैं कति नहीं रोता, मेरा जो धन अब गुम हो गया अब मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पक्का विश्वास है, और वो नहीं मिलेगा मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा, वो कौन सा धन था तेरा? तब उसने पूरी कथा सुनाई कि मेरे साथ भगवान ऐसे आए, ऐसे बताया, फिर मैं उस खिचड़ी ज्ञान में फिर मैं वकील बन गया, फिर अंतर ज्ञान हो गए, दोबारा फिर यह पूरी सृष्टि रचना या सुनाई मेरे ते जो दुर्गा उस आमनी देवी को धर्मदास जी ने सुनाई, और दूसरी बार फिर मैंने ऐसे प्रश्न कर दिए कि श्री कृष्ण जी भी शक्ति युक्त हैं, उन्होंने प्रमाण भी दिया कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित किया। आमनी बोली, बात तो सारी सत्य थी, पर आपने आप सेठ होकर के सौदा चूकिए, आप व्यापारी कहां रहे? धर्मदास कहता है कि आमनी यही तो दुख मान रहा हूं कि पहली बार अपने जीवन में मैं सौदा धोखा खाया, सौदा चूका हूं। आमनी ने कहा कि वो कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, और कौन सा वो हमें रोज मिला करते थे, उनका ज्ञान सुना तो उसे प्रभावित थे, आज परमात्मा का ज्ञान सुना और यह सत्य है, सब शास्त्र आधार है, तो क्यों ना मान लिया आपने? धर्मदास कहता, रो क्यों रहा हूं? इसलिए रो रहा हूं कि मेरे से महान गलती होगी, और भगवान जिसको ढूंढते फिरे वो स्वयं मेरे मुझ दास के पास आया, और मुझ नीच ने परमात्मा को ठुकरा दिया, अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेंगे, नो रो रहा हूं कि कहीं फिर ना आए मेरे पास। 6 महीने तक रोते रहे और पतले दुबले हो गए, आहार नहीं कर पाए, कहने के भगवान वो साधना तो मेरे से हो नहीं सकती, वो तो कति व्यर्थ है, और सत साधना मुझे मिली नहीं। अब 6 महीने के बाद परमेश्वर ने आमनी देवी में प्रेरणा की, कि पूछा आमनी देवी ने कि भगवान ने कुछ कहा होगा, वो कैसे आते हैं, कुछ तो विचार व्यक्त किए होंगे, कुछ बताओ हम समाधान करें। फिर धर्मदास को चेतना आई कि एक दिन कह रहे थे कि जहां धर्म भंडारे होते हैं मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वह प्रकट रहता हूं। आमनी देवी ने सोचा ये तो रो रो कर मर जाएगा, कहा कि तू भंडारा कर दे सेठ जी, 3 दिन के भंडारे का सारी सब जगह प्रचार कर दिया, 3 दिन भंडारा चलेगा, सब साधु संत आइयो, क्योंकि वो साधु रूप में थे, प्रभु एक जिंदा रूप में थे, सभी संतों को जो साधु मानते हैं हम उस वेशभूषा वालों को सबको आमंत्रित कर दिया, और कोई हजारों की संख्या में संत जन भगत जन रोटी खाने आए भंडारा पर। 3 दिन तक समागम चलता रहा, लेकिन वो परमात्मा की सूरत नहीं दिखी। अंतिम दिन दोपहर के बाद आफ्टरनून में जब देखा कि 100-200 महात्मा भोजन खाने वाले शेष हैं और वो परमात्मा नहीं आए, तो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि परमात्मा या तो आज दर्शन दे दियो, नहीं कल आपका दास संसार में नहीं है। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। कहते हैं या तो जल्दी मिलो मेरे प्रभु, नहीं तो आत्मघात करूंगा, अब मैं जी नहीं सकता मेरे मालिक, अब रोजाना मेरे से सहन नहीं होती तेरी विदाई। या तो ये मार्ग बताना नहीं था प्रभु, लग रहे थे अपने डले डोण में ढोते रहते, अब ऐसा ज्ञान अचंभ गौराया, मैं ना जीवूं सुन अवगत राया, ऐसा अनमोल ज्ञान मुझे बता दिया, अब मैं जीवित रहने योग्य ही नहीं रहा। इतना सोच करके मन में दृढ़ संकल्प किया कि अब इनको विदा कर देता हूं और मैं अब आत्महत्या करूंगा। तभी क्या देखा कि बैठे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे पदम वृक्ष के तीरम। वही जिंदे के रूप में एक कदम वृक्ष के नीचे परमात्मा विराजमान है 200 फुट की दूरी पे। जब धर्मदास का ध्यान गया, रहे वो बैठे भगवान, इतनी स्पीड तो वाक्य ग्रह जैसे बच्चा अपनी माँ को लिपट जाता है। सुबह की खेत में बाहर गई हुई काम पे और सामने आती है, एकदम भाग के लिपट जाता है, चरण उसके सीने से लग जाता है। प्रभु मेरे से गलती होगी, मैं किन्नर हूं, मैं पापी आत्मा हूं, मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु, मेरे से महा गलती होगी। दोनों कान पकड़ता हूं, कति विवाद नहीं करूंगा, मुझे ये नाम और ज्ञान बता दो। तब परमात्मा ने कहा ठीक है धर्मदास, मेरा किसी को मत बताना मेरा भेद, इनको विदा करो इन संत महंतों को, और फिर आजा भीतर अंदर मकान में। फटाफट उनको विदा कर दिया और कहा भगवान इब जाइयो, मैं थक नहीं, अब नहीं जाऊंगा बेटा, चिंता मत करे। अंदर ले गया अपनी पत्नी के पास कि आजा भगवान आ गए, आमनी देवी आजा, मेरा धन मिल गया। एक एक पैर पकड़कर दोनों बैठ जाते हैं। धर्मदास रो रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है। आमनी देवी कहती है प्रभु ये तो नर्म दिल का आदमी था आपका बच्चा, इसको आपने इतना, आपके वियोग में इतना दुखी हो गया, यू के इतना दुखी करण का मानस है ये परमात्मा, आपके वियोग में ना खाना खा रहा था। आमनी देवी से कहा कि परमात्मा ने कहा आमनी देवी ये दुखी नहीं किया मैंने, इसका योग लोहा गर्म किया है, 6 महीने का इसको योग दिया है, इसका लोहा गर्म हो गया, अब मैं जो चोट लगाऊंगा वो ठीक ठिकाने लगेगी, ये वकील बन गया था इस काल का, और मैं इसको साथ साथ ये सारा ज्ञान देता जो कतई नहीं सुनता, काना पे टाड़ने लग जाता, आज इसको पूर्ण वियोग हो गया और अब मैं जो कहूंगा ये सारी इस मानेगा, इसलिए बेटी 6 महीने का ताव देना इसके लिए घना जरूरी था। फिर वो पूरी कथा फिर सुनाई, फिर प्रभु ने कहा आमनी देवी और दोनों ने उपदेश लिया। फिर धर्मदास ने कहा प्रभु एक दिन कहा कि हे मालिक एक बार आपका वो सतलोक मुझे दिखा दो। परमात्मा ने एविडेंस तैयार भी करने थे कि आने वाले इस कलयुग में इस ये पिछली पीढ़ी के लिए ये गवाह तैयार करने थे। धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए, 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़ा रहा धर्मदास, श्वास थोड़ा थोड़ा चलता रहा, सारा सतलोक दिखाया, काल का लोग दिखाया, वो काल दिखा के देख वो खड़ा वो जिसको तुम भगवान मानते थे, ये देख इसकी शक्ल देखते डर लग गए। ज्योति निरंजन दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई, फिर दिखाई वहां क्या क्या व्यवस्था होती है, धर्मराज के पास ले गए, नरक में जीव दुखी होते हुए दिखाए। वहां सतलोक में देखा परमात्मा को बैठे तकत के ऊपर, और इधर से गए जिंदा के रूप में वो दूसरे रूप में, और फिर जाके उस ओरिजिनल स्वरूप में परमात्मा जिंदे वाला स्वरूप उसके अंदर समा गया। तब धर्मदास ने कहा हे भगवान मुझे यही रख लो मेरे दाता, मुझे वापस मत भेजो, मुझे राख लो भगवान, मुझे वापस मत भेजो परमात्मा, वो तो बहुत बुरा हाल है। राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मुहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, वहां मत भेजो भगवान, वो तो काल की नगरी है, हमें मोहे मत घालो महाराज, काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है। क्या बताते हैं, वहां जाकर पता लग गया कि हम अपने पैर पे आपको आड़ा मार के गए थे, सब अन्य जो वहां रहते हैं हंस उन्होंने बताया कि तुमने गलती आपकी थी धर्मदास, तुम स्वयं सब इच्छा से काल के जाल में फंसे थे, तो वहां पता लग गया कि भगवान हमारे से बिगड़ी है, हमारे से गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो। तब परमेश्वर ने कहा भाई धर्मदास ऐसे नहीं हो सकता, जिस प्रबल इच्छा से तुम हमारे पास यहाँ आए हो, इतनी प्रबल इच्छा तुम्हारी वह अमृत लोक में मेरे अंदर होगी तब मैं लेकर आऊंगा, और तुम काल के जाल में फंसे उसके ऋणी होगे, उसके पृथ्वी रूपी विमान में, स्वर्ग रूपी विमान में तुम घूम रहे हो, उसी में आहार कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ गया है। अब जो मैं तुझे मंत्र दूंगा, दिया है इसका जाप कर, अपना ऋण उतार, और फिर मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, घबराइए मत, ना तेरी भक्ति करवाऊंगा ना युकार तुम्हें भजन करने नहीं देता। ऐसा कहकर के तीसरे दिन उसकी आत्मा को वापस छोड़ दिया। अब हम इतने बेईमान हो गए और परमात्मा ने कहा कि मैं काशी बनारस में जुलाहे का काम करता हूं, नीरू मेरा मुंह बोला मात पिता है, नीरू और नीमा, और वहां रहता हूं, पर पेट नुजची को ना के सचमुच यही होगी यकीन नहीं हुआ। तो धर्मदास बांधोगढ़ से चलकर वहां पहुंचा, बनारस आए, बनारस में देखा उस झोंपड़ी में परमात्मा बैठे, चरणों में समर्पण कर दिया, हे भगवान सचमुच आप पूर्ण ब्रह्म हो। तो फिर धर्मदास ने क्या कहा, भक्ति दान दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान मोह दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। धर्मदास कहे भगवान और ना चाहिए मुझे कुछ भी, मालिक मुझे भक्ति दान दे दो। यहां था संग जन्म हो गए, परमात्मा भी कहते हैं क्या मांगू कुछ ठिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवालक नाथी, उस जीवन उस नारावण के आज दीवान बाती। तो अब धर्मदास कहता भगवान और कुछ ना चाहिए तेरे दास ने, भक्ति दान दे दो मेरे मालिक। भक्ति दान दीजी, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, ये मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा ना करूं गुरु आन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरू नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो, ये आवागमन निवार कर अपना कर लीजो हो, ये आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया बिसरू नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया बोलू नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास जी कहते भगवान मुझे तो केवल भक्ति का दान दो मेरे दाता, और मनुष्य जन्म मिला है अब पद सेवा करूं। पद सेवा, सेवा मीन पूजा, पद मीन विधिवत साधना पद्धति। आप जो बताओगे प्रभु केवल वही साधना करूंगा, अन्य नहीं करूंगा। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना कोई मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्म ना मेरे और ना दूजा हो। यानी मन वचन कर्म से प्रभु कसम खाता हूं आपके बताए अनुसार के बिना मैं कोई साधना नहीं करूंगा। फिर कहते हैं ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो भोजल जीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ जल पैर न लाई। कैसे ऐसी ऐसी इन आठ और सिद्धियों को और नौ निधि, इनको मालिक मुझे जरूरत नहीं, और ना वैकुंठ में निवास करने की मुझे आवश्यकता नहीं। ये सब थोथरी आशा, सब यूजलेस है। ये सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, परमात्मा सपने में भी ना मांगू आपते, ये आन तुम्हारी हो। क्योंकि पता लग गया मालिक ये मांगते मांगते मर गए, मारा भिखारीपन खत्म नहीं हुआ। जैसे गरीबदास साहब जी कहते हैं, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूमया तो मिला ना निर्गुण राशा। तो यहां उसी को दोहरा रहे हैं कि परमात्मा ये नहीं मांगूंगा जिंदगी में आपसे, ये तो आप हमें आप पे दोगे, आपके बच्चे हैं। माता पिता को पता होता है सर्दी आ रही है, अपने आप बच्चों के वो कपड़े तैयार कर देता है, वो मांगो चाहे मत मांगो। तो जब हम इनके इस मालिक के हो जाएंगे, उसको पहले पता मेरे बच्चों को क्या आवश्यकता होगी, आपको तुरंत रख देगा लाकर, ये विश्वास करके देखना दाता। लेकिन हम गलती करते हैं, हम पद्धति छोड़ देते हैं। इस मालिक का जरा सा भी नियम भंग कर दिया तो ये कति नहीं सुनेगा, काल बिल्कुल तैयार बैठा है। जैसे कहते हैं राजा राम की कार उंगली, राजा राम की कार उलंगी, सीता लंक मजारे। अब जब सीता जी को ये कहा था श्री राम ने, सीता जी ने जब कहा कि ये मृग मेरे लिए लाओ, तो सीता राम ने कहा था कि सीता ये मृग नहीं, ये कोई जाल है, लेकिन जिद पकड़गी। फिर कहने का ठीक है मैं जा रहा हूं, पर एक लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक मेरी बात सुन ले, या तो मेरी तलाश में आना मत, और आए भी तो तुम ये मंत्र बोल कर एक रेखा खींच के आना इस कुटिया के चारों तरफ, और सीता को कह देना कि इसे बाहर नहीं जावे चाहे कोई भी आवे। जब काफी देर श्री राम नहीं आए और मारिच ने ऊपर से आकाशवाणी की हाय वायु मर गया, हाय मर गया, तो सीता ने कई ऐसे अपशब्द कह दिया जिससे राम लक्ष्मण ने जाना पड़ा। लेकिन जाते समय कहा कि ये भाई की आज्ञा है, इस कार से तू बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना, इतना रहम करना हमारे पे। अब सीता ने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी। उधर से रावण जो है साधु बनकर आ गया और कहा माई भिक्षा दो, कहा कि अंदर आके ले जाओ। रावण जब आने लगा तो एकदम उसमें अग्नि फटी, अग्नि की लपटें निकली, रावण 10 कदम पीछे उठ घट गया, नहीं तो भस्म हो जाता। तो कहा सीता से कहा कि अगर भिक्षा देनी है साधु को तो बाहर आकर दीजिए, क्या तुम मुझे हिंसा करना चाहती हो। अब ये पॉइंट बताना चाहते हैं कभी परमात्मा कि तुम लापरवाही करते हो काल के मार्ग में, सतगुरु के मार्ग में, जरा सी लापरवाही तुम्हें कितनी भयंकर से हो जाएगी। तो सीता ने सोचा साधु है क्या फर्क पड़े है, अभी देकर 2 सेकंड में वापस आ जाऊंगी, आटा ही तो देना है। अब जो ही उसने बाहर हाथ करा वहीं से पकड़ दी और उठा ले गया। वो जरा सी लापरवाही कितनी महंगी पड़ी, करोड़ों व्यक्ति मर गए सीता को छुटवाने के लिए, और राम और लक्ष्मण रो रो कर पागल हो गए, और कितनी दुख पाई 12 वर्ष तक उस काल के रावण के जाल में फंसी रही। आहार मिलाना, कोई स्नान करने को स्थान मिलाना। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम इस हमारे इस मार्ग को, इसमें लगने के बाद इस मर्यादा को, इस पद को, इस पद्धति से भिन्न मत करना, कोई भी मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा भंग करते तुम्हारे ऊपर अटैक काल का हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी कोई आपत्ति का कोई समय संयोग नहीं है, वैसे गलतियां भी करते रहेंगे, काल उनको थेपड़ कर रखे, अब ठीक है लगे रहो। और जिनका संयोग आगे कोई बहुत भयंकर उसका होता है और श्वास शेष नहीं होते और उनसे कोई गलती हो जाती है तो फिर काल नहीं छोड़ता, क्योंकि परमात्मा का नियम है। रात्रि में बताएंगे इनके वचन हुए थे प्रभु के साथ काल के, कि जो मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरी मर्यादा में रहेगा, मैं नहीं छेड़ूंगा और उसके आगे नतमस्तक रहूंगा, और तेरी मर्यादा से बाहर आ गया वो मेरा होगा प्रभु, उस पर जबरदस्ती ना करियो, ये वचन भरवा रखे। अब परमात्मा यही कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तुमरा बाना, जब तक मेरी मर्यादा में जीव रहेगा तेरा तीर नहीं लग सकता। लेकिन हम इतने नादान बालक हैं, कहते कहते मर्यादा तोड़ जाते हैं। हम परमात्मा यही कहते हैं, भक्ति चाहे कम कर लो, दान भी कम करना, पर मेरी मर्यादा से बाहर मत जाना, फिर मैं आप ले जाऊंगा। पर हम यही गलती कर जाते हैं, हम समाज में ज्यादा रहते हैं, उन लोगों की कोई मर्यादा नहीं, उनकी कोई भक्ति नहीं, तो मर्यादा कहां से होगी? और मर्यादा के बिना या भक्ति रूपी फसल तैयार नहीं हो सकती। किसान खेत में चारों तरफ मेड़ बनाता है, वो मर्यादा बनाता है तो खाद और पानी उसका ठीक ठिकाने रहता है, और वो बढ़िया, वो डौल ना हो तो कहीं का कहीं जाएगा, वो फसल साफ उसकी नहीं बन सकती, सफल नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार हमने अपने परमात्मा की प्रत्येक नियम को निभाते हुए इस भक्ति को करना। यह धर्मदास जी कह रहे हैं कि अब पद सेवा करूंगा, सेवा मीन पूजा, और पद माने आपकी बताई हुई पद्धति विधि से, और कोई नहीं करूंगा परमात्मा, ना तीर्थ जाऊंगा, ना व्रत करूंगा, ना किसी मंदिर में जाऊंगा, ये सब बकवाद है, ये साधना ठीक नहीं थी। तो इस प्रकार धर्मदास जी का कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आज सुबह के सत्संग में भक्तात्मा परमेश्वर कबीर साहब तथा भक्त श्री धर्मदास साहब जी का संवाद सुन रहे थे। किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल को समझाया, पहले दास बने, अपने आप को एक अज्ञानी कहा, और आदरणीय धर्मदास साहेब जी को महात्मा कहा। यदि पहले बार ही परमेश्वर ये कह देते कि तेरी साधना गलत है, तू गलत कर रहा है, तो धर्मदास एक नहीं सुनता, उठकर चला जाता। इस काल के जाल से निकालने के लिए परमेश्वर ने कितने तरीके हमारे लिए अपनाए हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे वास्तविक आधार हैं, आत्मा के आधार हैं, और यही हमारी संभाल नहीं करेंगे तो और कोई हमारी संभाल करने वाला नहीं है। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पार। तो क्या कहा पहले? प्रार्थना की, हे महात्मा जी मुझे कुछ मार्ग बता दो, मैं बहुत भटक लिया। ऐसा कहा तो धर्मदास जी ने जो क्रिया उसने सुन रखी थी, अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त था, पूर्व गुरु से, वो बताना प्रारंभ किया, तो उसमें से फिर निष्कर्ष निकाल कर परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा को काल का जाल समझाया। उसके ऊपर एक शब्द है, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास तब यूं बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास तब यूं बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा, गीता जी का पाठ करता हूं। इस विद मुक्ति पाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिला सावरग में अस्थान, भक्त में अर्ज करूं।